Hello listeners and welcome to our English language program Daily Current Affairs Updates. This is your RJ Priyanka and without any further delay we begin our today's episode with our very first daily update which belongs to the category of important day. Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti 23rd January. Netaji Subhash Chandra Bose was an Indian nationalist whose patriotism for India has left an indelible imprint on the hearts of many Indians. He is best known as the founder of Azad Hind Fauj and his catchphrase is Tum mujhe khoon do main tumhe azadi dunga. Tum mujhe khoon do main tumhe azadi dunga. Jai Hind and Delhi Chalo are some of his other well-known slogans. Netaji Subhash Chandra Bose was born on January 23, 1897 in Cuttack, Odisha and died on August 18, 1945 in a hospital in Taiwan from burns sustained in a plane crash. Now let's move forward to our second daily update which belongs to the category of agreement. MP Tourism Board signed MOUs with chapters of 8 countries of GOPIO. The Madhya Pradesh Tourism Board signed MOUs with chapters of the global organization GOPIO of people of Indian origin in 8 countries. These memorandums of understanding MOUs were signed with France Metropole Paris, Mauritius, Reunion Island, Martinique, Sri Lanka, GOPIO International, Malaysia and Mauritius. According to Principal Secretary Sri Shukla, these MOUs were signed with the goal of increasing cooperation in the development of the state's tourism sector as well as the promotion and publicity of tourist destinations. Now let's move forward to our third daily update which belongs to the category of economy. In a first, India among the top 5 ECM markets globally in 2022. Despite a 43% decrease in the amount of funds raised, India was among the top 5 markets in the world for equity fundraising. According to a Kotak Investment Banking report, funds worth $16.4 billion were transacted through equity capital market ECM activity in India in 2022. Historically, India has not been among the top 10 countries in terms of ECM activity. India's outperformance is due to a sharp drop in ECM activity in major markets such as the United Kingdom, Australia and Japan. Now let's move forward to our fourth daily update which belongs to the category of obituaries. British linguist Ronald E. Asher, specialized in Dravidian languages, passes away. Ronald E. Asher, a renowned linguist and world ambassador for Tamil and Malayalam, died in Edinburgh, Scotland at the age of 96. Professor Asher began his relationship with India in 1953 when he arrived in Changam, Tamil Nadu as an assistant lecturer in linguistics from the School of Oriental and African Studies at the University of London. In 1963, he switched to Malayalam. Professor Asher translated several Malayalam and Tamil books into English. He also published numerous literary reviews on Malayalam and Tamil literature. Now let's move forward to our fifth daily update which belongs to the category of science and technology. Startup firm IG Drones develops India's first 5G enabled drone, Skyhawk. IG Drones, a startup, has developed a 5G enabled drone capable of vertical takeoff and landing. Skyhawk is a drone that can be used in a variety of industries, including defense and medicine. The drone can carry a 10 kg payload and has an endurance of around 5 hours. With telecom service providers, TSPs, providing 5G services in the country, these drones can be controlled with much more precision and can be controlled from the command center directly rather than being on the field. Now let's move forward to our sixth daily update, which belongs to the category of banking. SBI launched e-bank guarantee facility in association with NESL. State Bank of India SBI, the country's largest lender, has launched an e-bank guarantee EBG facility in collaboration with National E-Governance Services Limited NESL. This function will be replaced by e-stamping and e-signature with the introduction of EBG. SBI claims that this facility will usher in a revolution in the banking ecosystem where bank guarantees are frequently used in large quantities. Currently, these guarantees are issued by the bank using physical stamping and wet signatures. Now, let's move forward to our seventh daily update, which belongs to the category of appointment. Cognizant appoints Ravi Kumar S. as Chief Executive Officer. Cognizant has named Ravi Kumar S. as its new Chief Executive Officer, CEO, following approval from the company's board of directors. Ravi Kumar S., a Cognizant board member and well-known for his vibrant tenure at Infosys, where he served in various leadership roles for 20 years, succeeds Brian Humphries as CEO. According to the official announcement, Kumar's appointment is effective immediately. Humphries, however, will serve as special advisor to Cognizant until March 15, 2023 in order to ensure a smooth transition. Now let's move forward to our eighth daily update, which belongs to the category of state. Saharsh Special Education Program launched by Tripura State Government. In an effort to promote social and emotional learning, the Tripura government has implemented a program called Saharsh in all state government and government-aided schools. The Saharsh program was piloted in 40 schools across the state in August of last year. It will be extended to all government and aided schools in the state beginning in the second week of January, according to officials. He claimed that the school education department implemented 36 reforms in the last 5 years, while the higher education department implemented 19, the most in the country. Now let's move forward to our ninth daily update, which belongs to the category of awards. Indian peacekeepers honored with UN medal for exemplary service. Over 1,000 Indian peacekeepers serving with the UN mission in South Sudan, UNMISS, were awarded with the prestigious UN medals at an award ceremony in the Upper Nile, where for the first time a female officer of the Indian Army, Major Jasmine Chatta, led the parade of the large Indian contingent, which included infantry, engineers and medical officials. At a special award ceremony in Upper Nile, 1171 Indian peacekeepers serving with the UN mission in South Sudan were honored with UN medals for their outstanding service. Now let's move forward to the 10th and last daily update for today, which belongs to the category of economy. India's forex reserves shrink by US$1.268 billion to US$561.583 billion. According to Reserve Bank data, India's forex reserves fell by $1.27 billion to $561.58 billion for the week ending January 6. Central Bank's gold reserves increased by $461 million to $41.78 billion, it said. The overall reserves had increased by $44 million to $562.85 billion in the previous reporting week after two consecutive weeks of the slide. The reserves had been declining as the central bank deployed the reserves to defend the rupee amid pressures caused by global developments. So with this update, we have now come to an end of today's episode of Daily Current Affairs Updates. Please stay tuned for more learning. This is your RJ Priyanka signing off for the day. Thank you. Hello listeners and welcome to our English language program, Daily Current Affairs Quiz. This is your RJ Priyanka and without any further delay, we begin our today's episode with our very first question. So the first question for today's quiz is, in which of the following city, the Union Minister Shri Sarbanand Sonowal inaugurated the School of Logistics, Waterways and Communication? The correct answer for the question is A. Agartala. Union Minister of Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal inaugurated the School of Logistics, Communication and Waterways in Agartala, Tripura to provide support for studies, research, training and workshops to the traders and entrepreneurs of northeastern region. Now let's move forward to our second question. In association with National E-Governance Services Limited, NESL, which of the following bank has launched e-bank guarantee EBG facility? The correct answer for the question is D, SBI. The country's largest lender, State Bank of India, SBI, has launched eBank Guarantee EBG facility by joining hands with National E-Governance Services Limited, NESL. SBI claims that this facility will bring about a revolutionary change in the banking ecosystem, where bank guarantee is frequently used in large volumes. Now let's move forward to our third question. Which of the following state has signed MOUs with chapters of 8 countries of Global Organization of People of Indian Origin, GOPIO? The correct answer for the question is B, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Tourism Board signed MOUs with chapters of 8 countries of the Global Organization of People of Indian Origin, GOPIO. These MOUs were signed with France Metropole Paris, Mauritius, Reunion Island, Martinique, Sri Lanka, GOPIO International, Malaysia and Mauritius. Now let's move forward to question number 4. Who was appointed as the president of COP28 Climate Conference? The correct answer for the question is D. Sultan Al Jaber. The head of one of the world's biggest oil companies has been named to lead the COP28 Global Climate Talks in Dubai later this year. Sultan Ahmed Al Jaber is currently the chief executive officer of the Abu Dhabi National Oil Company. Now let's move forward to question number 5. Which state celebrate Mongi Festival annually? The correct answer for the question is B. Assam. Mongit Festival is a musical festival celebrated annually in Assam. Having begun in 2020 as a movement of arts and music, Mongit aims to nurture upcoming musical talents of Assam. Now let's move forward to question number 6. India's first center of excellence in online gaming will be set up at Dash. The correct answer for the question is B. Shillong. The Ministry of State for Electronics and Information Technology, MeitY and Skill Development and Entrepreneurship, Rajiv Chandrasekhar, announced that India's first Center of Excellence, COE, of online gaming will be set up in Shillong, Meghalaya by March 2023. Now let's move forward to question number 7. Which of the following district has become the first constitution literate district of India? The correct answer for the question is B. Kollam. In a remarkable achievement, Kollam has become the first constitution literate district in the country. The announcement of the feat was made by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan in a ceremony. Now let's move forward to question number 8. Who among the following won the Miss Universe 2023 title? The correct answer for the question is A. R. Bonnie Gabriel. The winner of Miss Universe 2023 pageant is R. Bonnie Gabriel of the United States. At the 71st Miss Universe pageant's grand finale, the diva was crowned by Miss Universe 2021 Harnaz Sandhu. The event took place on January 15th in New Orleans, USA. Now let's move forward to question number 9. In which of the following state the DotFest festival was organized? The correct answer for the question is D. Odisha. Chief Minister of Odisha, Naveen Patnaik, on 15th January inaugurated DotFest, which will run till January 24th, the grand cultural extravaganza that is being organized in the wake of the Men's Hockey World Cup. Now let's move forward to the 10th and last question of today's quiz. Which of the following naval exercise was recently held between India and France? The correct answer for the question is A. Varuna. The navies of India and France has recently conducted the 21st edition of bilateral exercise Varuna 2023 in Arabian Sea. While the bilateral exercise between the two navies were initiated in 1993, it was christened as Varuna in 2001 and has become a hallmark of India-France strategic bilateral relationship. So with this, we have now come to an end of today's episode of Daily Current Affairs Quiz. Please stay tuned for more learning. This is your RJ Priyanka signing off for the day. Thank you. Namaskar dosto. आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट. मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों पर एक छाप छोड़ी है। उन्हें आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके अन्य प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एक अस्पताल में विमान दुर्घटना में जलने के बाद उनका निधन हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ MOUS पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ MOUS पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों पर फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोग बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार और संवर्धन के उद्देश्य से ये MOUS निष्पादित किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। पहली बार भारत 2022 में विश्व स्तर पर शीर्ष 5 ECM बाजारों में शामिल। इक्विटी फंड जुटाने के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 बाजारों में से एक था, जबकि धन जुटाने की मात्रा में 43% की गिरावट आई थी। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM गतिविधि के माध्यम से $16.4 बिलियन के फंड का लेन देन किया गया था। परंपरागत रूप से ECM गतिविधि के मामले में भारत शायद ही कभी शीर्ष 10 में शामिल हुआ है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे प्रमुख बाजारों में ECM गतिविधियों में तेज गिरावट के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। द्रविड़ भाषाओं में विशेषज्ञता रखने वाले ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई अशर का निधन। प्रसिद्ध भाषाविद और दुनिया में तमिल और मलयालम के राजदूत रोनाल्ड ई अशर का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में निधन हो गया। प्रोफेसर अशर ने 1953 में भारत के साथ अपने संबंधों की शुरुआत की जब वह लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से भाषा विज्ञान में सहायक व्याख्याता के रूप में तमिलनाडु के उत्तरी अरकोट जिले के चंगम पहुंचे। उन्होंने 1963 में मलयालम की ओर रुख किया। प्रोफेसर अशर ने मलयालम और तमिल में कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने मलयालम और तमिल साहित्य के बारे में कई साहित्यिक समीक्षाएं भी लिखी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक विकसित किया। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने एक 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। स्काई हॉक नाम के ड्रोन का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। ड्रोन 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अभी दूरसंचार सेवा प्रदाता TSPs देश में 5G सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण इन ड्रोनों को बहुत अधिक सटीकता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है और मैदान पर होने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। SBI ने NESL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ हाथ मिलाकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है। EBG के आगमन के साथ इस फंक्शन को ई स्टैंपिंग और ई हस्ताक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। SBI का दावा है कि इस सुविधा से बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जहां बड़ी मात्रा में बैंक गारंटी का अक्सर उपयोग किया जाता है। वर्तमान में बैंक इन गारंटी को भौतिक मुहर और हस्ताक्षर के साथ जारी करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। कॉग्निजेंट ने रवि कुमार एस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने रवि कुमार एस को कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। कॉग्निजेंट में बोर्ड के सदस्य और इन्फोसिस में अपने जीवंत कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध रवि कुमार एस ने विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में 20 वर्षों तक कंपनी की सेवा की। उन्होंने सीईओ के रूप में ब्रायन हम्फ्रीज की जगह ली। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुमार की नियुक्ति तत्काल आधार पर प्रभावी हो गई है, लेकिन एक सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक कॉग्निजेंट के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहर्ष नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। सहर्ष पिछले साल अगस्त में पायलट आधार पर राज्य के 40 स्कूलों में शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह से राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 36 सुधार और उच्च शिक्षा विभाग ने 19 सुधार किए, जो देश भर में सबसे अधिक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भारतीय शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ सेवारत 1000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है, जहां पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर जैस्मीन चड्ढा ने अपर नील में पुरस्कार समारोह में पैदल सेना इंजीनियरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित बड़े भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया। अपर नील में एक विशेष पुरस्कार समारोह में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारत के 1171 शांति रक्षकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.268 अरब डॉलर घटकर 561.583 अरब डॉलर रहा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 1.27 अरब डॉलर घटकर 561.58 अरब डॉलर रह गया। केंद्रीय बैंक का स्वर्ण भंडार 46.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 41.78 अरब डॉलर हो गया। लगातार 2 सप्ताह की गिरावट के बाद पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 562.85 अरब डॉलर हो गया था। वैश्विक घटनाक्रमों के कारण दबाव के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा रुपए की रक्षा के लिए भंडार का उपयोग किए जाने के कारण भंडार में गिरावट आ रही थी। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।
नमस्कार, मी तेजल आपल्या सगळ्यांचं चालू घडामोडी या सत्रात सहर्ष स्वागत करते। आजची पहिली घडामोड, गुजरातच्या गांधीनगर इथं बिझनेस 20 अर्थात B20 अधिकृत तपासणी बैठकीला सुरुवात झाली। B20 इन्सेप्शन मीटिंगची संकल्पना रेज असून ज्याचा अर्थ जबाबदार, वेगवान, नाविन्यपूर्ण, शाश्वत आणि समान व्यवसाय असा होतो। पुढील वर्षामध्ये धोरण शिफारशींसाठी पैसे देणाऱ्या उद्योगांच्या प्राधान्यक्रमांवर B20 मध्ये चर्चा करण्यात आली। भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचा भाग म्हणून गुजरात इथं आयोजित या परिषदेत 15 सहभागी बैठकींपैकी B20 ही पहिली बैठक आहे। 250 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसह सुमारे 600 व्यापारी नेते या संमेलनात सहभागी झाले। उद्घाटन सत्रानंतर अनेक पूर्ण सत्रे झाली, ज्यामध्ये G20 राष्ट्रांचे व्यावसायिक नेते, हवामान कृती, आर्थिक समावेशन, जागतिक डिजिटल सहकार्य यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास उत्सुक होते। 2023 संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय बाजरीचे वर्ष म्हणून घोषित केल्याने गुजरातच्या या बैठकीच्या दरम्यान प्रतिनिधींना
जेवणादरम्यान बाजरीचे पदार्थ देण्यात आले. गुजरातमधील संधी या विषयावर सुद्धा एक समर्पित पूर्ण सत्र झाले, ज्यामध्ये गुजरातमधील व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या संधींची झलक सांगण्यात आली. पुढील बातमी. अमेरिकेनं प्रथमच भारतीय व्हिसा अर्जदारांच्या सोयीसाठी भारतातल्या त्यांच्या व्हिसा कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची घोषणा केली. व्हिसा मिळवण्यासाठी वैयक्तिक मुलाखतीला हजर राहाव्या लागणाऱ्या अर्जदारांसाठी अमेरिकेनं ही सुविधा त्यांच्या दूतावासात उपलब्ध करून दिली. कोविडच्या काळात अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास यांच्यात व्हिसा जारी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्यात आली होती. केवळ आपत्कालीन सेवांसाठी व्हिसा जारी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. पुढील बातमी. नागरिकांना तत्परतेनं सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून राज्यात 1 एप्रिल 2023 पासून ई ऑफिस कार्यपद्धती सुरू करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग अर्थात DARPG आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्यानं मुंबई इथं होणाऱ्या ई गव्हर्नन्स या विषयावरच्या 2 दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचं उद्घाटन करण्यात आलं. ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून गतिमान प्रशासन राबवणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची 2500 कोटी रुपये रक्कम एका दिवसात आणि एका क्लिकमध्ये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली. यापुढे नुकसान भरपाई रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात तसंच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुद्धा त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करणं, ड्रोन कॅमेऱ्याच्या सहाय्यानं कृषी सर्वेक्षण, लोकांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्याचं शासनाचं प्राधान्य राहील. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही राज्याच्या विकासाची दोन चाकं असून त्यांच्या सहकार्यातून राज्य सरकार या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या सहाय्यानं यशस्वी वाटचाल करेल. विविध पदांच्या 75,000 नोकर भरतीसाठी पारदर्शक पद्धतीनं TCS सारख्या विश्वासार्ह कंपन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. दावोस परिषदेत महाराष्ट्राची उपस्थिती उल्लेखनीय राहिली असंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. पुढील बातमी. वागीर ही कलवरी वर्गाची 5वी पाणबुडी भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली. नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरिकुमार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या समारंभात वागीर पाणबुडीचं जलावतरण झालं. मेसर्स नेव्हल ग्रुप फ्रान्सच्या सहयोगानं मुंबईतल्या माझगाव डॉक गोदीमध्ये या बोटीची बांधणी झाली. कलवरी वर्गाच्या 4 पाणबुड्या यापूर्वीच भारतीय नौदलात दाखल झाल्या. भारताच्या सागरी हितसंबंधांना पुढे नेण्यात भारतीय नौदलाच्या क्षमता वाढवण्यात वागीर महत्वाची भूमिका बजावेल. ही पाणबुडी पृष्ठभागावरचं युद्ध, पाणबुडी विरोधी युद्ध यांसह विविध मोहिमा हाती घेण्यासाठी सक्षम आहे. पुढील बातमी. मुंबईतील दादर वाटुंगा सांस्कृतिक केंद्राचे वार्षिक पुरस्कार जाहीर झाले. यंदाचा संगीत शिक्षक जीवनगौरव पुरस्कार श्री जोशी उर्फ अच्युत जोशी यांना घोषित करण्यात आला. संगीत क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलावंत डॉक्टर विजय टिळक, नाट्य दिग्दर्शक अतुल पेठे, ज्येष्ठ अभिनेत्री निवेदिता जोशी सराफ, समीक्षक राजीव जोशी, अभिनेत्री मधुराणी प्रभुलकर, संगीत नाट्य क्षेत्रातील उदयनमुख अभिनेत्री प्राची जठार, संगीत विशारद परीक्षेत दादर आणि माहीम विभागातून प्रथम क्रमांक प्राप्त अमृता गोगटे हे या पुरस्कारांचे मानकरी ठरले. संगीत नाटक साहित्य अशा विविध क्षेत्रात विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांना हे पुरस्कार दरवर्षी प्रदान केले जातात. येत्या 28 जानेवारीला केंद्राच्या सभागृहात हा पुरस्कार वितरण सोहळा साजरा होईल. यापुढची बातमी. बुर्किनो फासोच्या जंटा सरकारनं फ्रेंच सैन्याला 1 महिन्याच्या आत देश सोडण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय प्रसारक RTBE अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्थेचा हवाला देऊन हा निर्णय जाहीर केला. पश्चिम आफ्रिकेच्या शेजारच्या माली देशात 9 वर्ष राबवलेल्या मोहिमेनंतर फ्रान्सनं आपलं उर्वरित सैन्य मागे घेतल्यानंतर 5 महिन्यांनी बुर्किनो फासो सरकारनं हा निर्णय घेतला. बुर्किनो फासो सरकारनं देशातली फ्रेंच सैन्याची तैनात संपवण्याचा प्रत्यक्ष निर्णय घेतल्याचं स्थानिक माध्यमांनी म्हटलं. गेल्या शुक्रवारी राजधानी ओगाडोगू इथं शेकडो नागरिकांनी फ्रान्सविरोधात निदर्शनं केली आणि फ्रेंच सैन्यानं आपला देश सोडावा अशा घोषणा केल्या. यानंतरची बातमी. अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्नियातील मॉन्टेरी पार्क शहरात झालेल्या गोळीबारात किमान 10 जण ठार झाले, अनेक जण जखमी झाले. तिथल्या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रदेशातील सर्वात मोठ्या चंद्र नववर्ष कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 2 दिवसीय उत्सवाच्या प्रारंभासाठी एका डान्स क्लबमध्ये 1000 लोक जमले होते, त्यावेळी हा गोळीबार झाला. लॉस एंजेलिसच्या कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाने गोळीबाराची चौकशी सुरू केली असून संशयितांचा शोध सुरू असल्याचं म्हटलं आहे. जखमींना शहरातील विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या पुढील बातमी. युरोपच्या विकासाच्या प्रक्रियेत फ्रान्स आणि जर्मनीनं अग्रेसर असलं पाहिजे असं मत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केलं. जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्झ आणि मॅक्रॉन या दोनही नेत्यांनी पॅरिसमध्ये युद्धोत्तर सहकार्याला 60 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल LEC करारावर स्वाक्षरी. यावेळी मॅक्रॉन बोलत होते. जर्मनी आणि फ्रान्सने युरोपला पुन्हा एकसंध करण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे असंही मॅक्रॉन म्हणाले. मॅक्रॉन यांनी नवीन ऊर्जा प्रारूप तयार करण्याच्या आणि नवकल्पना तसेच उद्याच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. संरक्षण अंतराळ आणि मुत्सद्देगिरीमध्ये युरोपियन संघ स्वतःच्या अधिकारात भूराजकीय प्रभाव राखेल असा विश्वास देखील मॅक्रॉन यांनी यावेळी व्यक्त केला. पुढील घडामोड. ओडिशातील भुवनेश्वर इथल्या कलिंगा स्टेडियममध्ये सुरू असलेल्या पुरुष विश्वचषक हॉकी स्पर्धेत भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडनं भारतावर पेनल्टी शूटआउट दरम्यान 4-5 अशी मात केली. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड, बेल्जियम आणि इंग्लंड हे 4 संघ आपापल्या गटात पहिलं स्थान मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत थेट पोहोचले. आता क्रॉस ओव्हरचे सामने 24 आणि 25 तारखेला होणार आहेत. पुढील घडामोड. उत्तराखंडच्या पिठोरागड जिल्ह्यात 3.8 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाचा धक्का बसला. रामगंगा नदीच्या जवळ भूगर्भात 10 किलोमीटरवर ह्याचा केंद्रबिंदू होता. याबाबतच्या हानीचं वृत्त अद्याप कळू शकलं नाही. जोशीमठ इथं भूस्खलनामुळे तडे गेल्याने सुमारे 900 घरातील लोकांना मदत करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात येत आहे. दरम्यान उत्तराखंडमधील विविध शहरांना पुढील 2 दिवसात पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.
वळूया व्यवसाय बातमीकडे. अब्जाधीश जेफ बोझेस यांची ई कॉमर्स कंपनी अमेझॉन सर्वात मूल्यवान ब्रँड ठरले. या ब्रँडने ॲपलला सुद्धा मागे टाकले. अमेझॉनने यावर्षी ब्रँड व्हॅल्यू 350 बिलियन डॉलरवरून 299 बिलियन डॉलरवर घसरूनही जगातील सर्वात मौल्यवान ब्रँड म्हणून अव्वल स्थान मिळवले. ब्रँड व्हॅल्युएशन कन्सल्टन्सी ब्रँड फायनान्सच्या अहवालानुसार ग्लोबल 500 2023 अमेझॉन पहिल्या क्रमांकावर असताना त्याचे रेटिंग AAA+ वरून AAA वर घसरल्याने ब्रँड मूल्य यावर्षी 50 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त घसरले. पुढील व्यवसाय बातमी. मास्टर कार्डने भारतातील स्वाक्षरी गर्ल्स 4 टेक म्हणजे स्टेम या शिक्षण कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. गर्ल्स फॉर टेक या कार्यक्रमाला मास्टर कार्ड इम्पॅक्ट फंड आणि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशनच्या भागीदारीतर्फे समर्थित केले आहे. स्टेमचा अर्थ सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथमॅटिक्स होय. पुढील व्यवसाय बातमी. गुगल भारतीय बाजारपेठेसाठी एका साऊंड बॉक्सवर सक्रियपणे काम करत आहे. जसे की आपण शेजारच्या दुकानात पेटीएम किंवा फोन पेवर पाहतो की डिजिटल पेमेंटवर ध्वनी सूचित होतो. विक्रेत्यांना युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसवर आधारित पेमेंटसाठी पुष्टीकरणाची सूचना देण्यासाठी स्वतःचा साऊंड बॉक्स आपल्याला ऐकू येतो. कंपनीने साऊंड पॉड बाय गुगल पे म्हणून आता ब्रँड केला आहे. सध्या दिल्लीसह उत्तर भारतातील काही दुकानदारांसोबत पायलट म्हणून याचे वितरण होत आहे. पुढील व्यवसाय बातमी. भारतीय एअरटेल समूहाने घोषणा केली की ते हैदराबादमध्ये एक मोठे हायपर स्केल डेटा सेंटर उभारण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील तेलंगणा लाऊंजमध्ये तेलंगणाचे IT उद्योगमंत्री KT रामाराव यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली. वळूया विज्ञान बातमीकडे. MSN ग्रुपने पोल बोरेस्ट या ब्रँड अंतर्गत ब्रेस्ट कॅन्सर थेरपीसाठी जगातील पहिले जेनेरिक पॅलाबोसिक्लब टॅबलेट लॉन्च केले. पॅलाबोसिक्लब याला USFDA, EMA आणि CDSCO यांनी संप्रेरक रिसेप्टर पॉझिटिव्ह ह्युमन एपिडर्मल ग्रोथ फॅक्टर रिसेप्टर निगेटिव्ह या स्थानिक पातळीवरील प्रगत किंवा मेटास्टॅटिक स्तनाचा कर्करोग असलेल्या रुग्णांसाठी हार्मोनल थेरपींच्या संयोगाने मान्यता दिली. 125 मिलीग्राम साठी 257 रुपये प्रति टॅबलेट, 100 मिलीग्राम साठी 233 रुपये प्रति टॅबलेट आणि 75 मिलीग्राम साठी अनुक्रमे 214 रुपये प्रति टॅबलेटची किंमत आहे. पाल बोरेस्ट अधिक परवडणारी आणि नवोदित टॅबलेटच्या जैविक गुणधर्मांशी समतुल्य आहे. या गोळ्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किंवा अँटीसिडसह प्रशासित केल्या जाऊ शकतात. टॅबलेट फॉर्म्युलेशनमध्ये लॅक्टोज किंवा जिलेटिन नसते. पोल बोरेस्ट प्रत्येकी 7 टॅबलेटच्या 3 स्ट्रिपच्या पॅकमध्ये 3 आठवडे आणि 1 आठवड्याच्या सवलतीच्या उपचार वेळापत्रकासाठी देण्यात येत असतात. यानंतरची विज्ञान बातमी. कॅनडातील मॅकगिल युनिव्हर्सिटी आणि बंगळुरूमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यातील खगोलशास्त्रज्ञांनी अत्यंत दूरच्या आकाशगंगेतील अणु हायड्रोजनपासून उद्भवणारे रेडिओ सिग्नल शोधण्यासाठी पुण्यातील जायंट मेट्रोवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपमधला डाटा वापरला. GMRT हा डेटा वापरून संशोधकांनी रेडशिफ्टवर दूरच्या आकाशगंगेत अणु हायड्रोजनमधून रेडिओ सिग्नल शोधला.
या संघाने शोधलेले सिग्नल आकाशगंगेतून उत्सर्जित झाले तेव्हा विश्व केवळ 4.9 अब्ज वर्षांचे होते. पुढे आहे शिखर परिषद बातमी. हेल्थकेअर आणि लाईफ सायन्सेसवर लक्ष केंद्रित करणारे भारतातील एकमेव केंद्र हैदराबादमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रीयल रेव्होल्युशन म्हणून तयार केले जाईल. दावोस येथे मंचाच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान तेलंगणा प्रशासन आणि जागतिक अर्थमंच यांच्यात सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक आहे क्लॉस श्वाब आणि त्याचे मुख्यालय आहे कॉलोनी स्वित्झर्लंड, तर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष आहे बॉरिस ब्रेंट. पुढील घडामोड. 2 दिवसीय थिंक 20 शिखर परिषद G20 नेतृत्वाखाली ग्लोबल गव्हर्नन्स विथ लाईफ व्हॅल्यूज अँड वेलबिंग या विषयावर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील प्रमुख व्यक्तींना एकत्र आणले जाईल. विविध राष्ट्रांचे 94 प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहतील. भोपाळमधील कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे होणाऱ्या उद्घाटन समारंभाला खासदार आणि मुख्यमंत्री उपस्थित राहतील. एशियन डेव्हलपमेंट बँक इन्स्टिट्यूट टोकियोच्या डीन आणि सीईओ तेत्सुशी सोनेबे या उद्घाटन समारंभाचे प्रमुख वक्ते असतील. पुढील घडामोड. पर्यावरणाचा नाश थांबवण्यासाठी आणि जैवविविधता पुनर्संचयित करण्यासाठी दरवर्षी आवश्यक $3 ट्रिलियन निधी उभारण्यासाठी मदत करण्याच्या प्रयत्नात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमद्वारे गिव्हिंग टू अँप्लिफाय अर्थ ऍक्शन सादर करण्यात आला. HCL टेक्नॉलॉजीज सह 45 भागीदार चेअरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा यांच्या मार्फत नवीन आणि विद्यमान सार्वजनिक खाजगी आणि परोपकारी भागीदारी निधी आणि उभारणीसाठी जागतिक चळवळीला पाठिंबा देत आहे. संरक्षण बातमी. मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांडच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने October 2022 ते January 2023 या कालावधीत मिलिटरी बॅटल फील्ड 2.0 नावाच्या हॅकॅथॉनची दुसरी आवृत्ती आयोजित केली. मिलिटरी बॅटल फील्ड 2.0चे उद्दिष्ट ऑपरेशनल सायबर आव्हानांना संबोधित करणे आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपायांसाठी विकास वेळ काढून टाकणे आहे. क्रीडा घडामोड. दक्षिण आफ्रिकेच्या हाशिम आमलाने निवृत्ती जाहीर केली. 2012 इंग्लंडमध्ये मालिका जिंकून कसोटी चॅम्पियनशिपची गदा जिंकली तेव्हा आमला दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्वात शक्तिशाली संघांपैकी एक होता. अमलाने लंडनमधील ओव्हल येथे पहिल्या कसोटीत नाबाद 311 धावा केल्या. December 1999 त्याने 16 वर्षांच्या वयोगटात दौरा करणाऱ्या इंग्लंड संघाविरुद्ध क्वा झुलू नताल संघासाठी प्रथम श्रेणीत पदार्पण केले. 5 वर्षानंतर कोलकाता येथे भारताविरुद्ध त्याने कसोटीत पदार्पण केले होते. पुढील क्रीडा बातमी. रवांडाची वेगवान गोलंदाज जिओवानी सुवासे हिला Under-19 महिला T20 विश्वचषकात कृती बेकायदेशीर आढळल्यानंतर तत्काळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी करण्यापासून ICC निलंबित केले. ICC पॅनल ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट स्पेशलिस्ट सदस्यांचा समावेश असलेल्या इव्हेंट पॅनलने हा निर्णय घेतला. पुढे आहे पुरस्कार बातमी. तमिळनाडू मर्कंटाईल बँक लिमिटेडला 2022 सर्वोत्कृष्ट बँक सर्वेक्षणात सर्वोत्कृष्ट लघु बँक पुरस्कार मिळाला. सर्वोत्कृष्ट बँकांचे सर्वेक्षण बिझनेस टुडे म्हणजे KPMG द्वारे केले गेले. मुंबईत हा पुरस्कार सोहळा पार पडला. TMBच्या वतीने MD आणि CEO श्री एस कृष्णन यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून पुरस्कार स्वीकारला. तमिळनाडू मर्केंटाईल बँक लिमिटेडची स्थापना 1921 नादर बँक म्हणून करण्यात आली होती. नंतर ती 1962 तमिळनाडू मर्केंटाईल बँक म्हणून बदलली गेली. TMB हे 2010 ते 2015 सतत 5 वर्ष वेगाने वाढणारी खासगी क्षेत्रातील बँकांपैकी एक आहे. अहवाल आणि निर्देशांक बातमी. ग्लोबल फायर पॉवर इंडेक्स देशात त्यांच्या संभाव्य लष्करी सामर्थ्यावर आधारित क्रमवारी लावते. यामध्ये भारत 4th क्रमांकावर आहे. ग्लोबल फायर पॉवर निर्देशांकात 145 देशांना स्थान दिले गेले. अमेरिकेचा स्कोअर आहे 0.0453, रशियाचा स्कोअर आहे 0.0501, चीनचा क्रमांक आहे 0.0511, भारताचा क्रमांक आहे 0.12.14 आणि जपानचा स्कोअर आहे 0.11.95. पुढील बातमी. वर्ष 2023 UK आधारित सल्लागार ब्रँड फायनान्सने तयार केलेल्या IT सर्व्हिसेस 25 यादीनुसार टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि इन्फोसिस यांनी दुसरं आणि तिसरं सर्वात मौल्यवान IT सेवा ब्रँड म्हणून आपलं स्थान कायम ठेवलं. TCSचे ब्रँड व्हॅल्यू 2% वाढली. $17.2 बिलियन ती आता झाली. ब्रँड फायनान्स अहवालात म्हटलं आहे की क्लायंट
विविध हायब्रिड कार्यपद्धतींकडे स्थलांतरित झाल्याने TCSने अनेक अनुकूल परिवर्तन कार्यक्रम वितरित केले. इन्फोसिसची ब्रँड व्हॅल्यू 2% वाढली आणि 13 अब्ज डॉलर झाली, कारण इन्फोसिसने जागतिक स्तरावरील सर्वात मौल्यवान IT सेवा ब्रँडमध्ये आपले स्थान मजबूत केले. AAA रेटिंगमध्ये इन्फोसिसला जगातील शीर्ष 150 सर्वात मौल्यवान ब्रँडमध्ये प्रवेश करण्यास मदत झाली. यानंतरची घडामोड. जगातील सर्वात वयोवृद्ध व्यक्ती फ्रेंच नन ल्युसिल रँडन यांचे वयाच्या 118 वर्षी निधन झाले. रँडन यांना सिस्टर आंद्रे म्हणून ओळखले जायचे. त्यांचा जन्म 11 फेब्रुवारी 1904 रोजी दक्षिण फ्रान्समध्ये झाला. त्यांना सर्वात वयस्कर युरोपियन म्हणून सुद्धा ओळखले जायचे. गेल्या वर्षी वयाच्या 119व्या वर्षी जपानच्या केन तनाकाच्या मृत्यूमुळे त्या जगातील सर्वात वयोवृद्ध व्यक्ती बनल्या होत्या.
आजची शेवटची घडामोड. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विधानसभा उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट मोरेश्वर टेमुर्डे यांचं राहत्या घरी झोपेतच हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. ते 82 वर्षांचे होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा विधानसभा मतदारसंघात शेतकरी संघटनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून 1991 आणि 1995 मध्ये ते आमदार झाले होते. 1991 ते 1995 या काळात विधानसभेचे ते उपाध्यक्ष होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सामील झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार मृतदेह चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाला दान करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना आज अशा पद्धतीने आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला. पुन्हा भेटूया पुढील सत्रात. धन्यवाद.
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज. मैं हूं आपकी RJ प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ. तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अगरतला. केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अगरतला त्रिपुरा में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया. आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ. नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के सहयोग से निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी SBI. देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ हाथ मिलाकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है. SBI का दावा है कि इस सुविधा से बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जहां बड़ी मात्रा में बैंक गारंटी का अक्सर उपयोग किया जाता है. आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीन की तरफ. निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इन समझौता ज्ञापनों पर फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल, मलेशिया और मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए गए. आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न चार की तरफ. COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सुल्तान अल जबर. दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक के प्रमुख को इस साल के अंत में दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है. सुल्तान अहमद अल जबर वर्तमान में अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. आइए बढ़ते हैं प्रश्न पाँच की तरफ. कौन सा राज्य प्रतिवर्ष मोंगीत त्योहार मनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी असम. मोंगीत त्योहार असम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक संगीत उत्सव है. कला और संगीत की एक पहल के रूप में 2020 में शुरू होने के बाद मोंगीत का उद्देश्य असम की आगामी संगीत प्रतिभाओं का पोषण करना है. आइए बढ़ते हैं प्रश्न छह की तरफ. ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शिलांग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मीटी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की कि मार्च 2023 तक शिलांग मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कोल्लम। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में इस उपलब्धि की घोषणा की। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आर बॉन गेब्रियल। मिस यूनिवर्स 2023 पैजेंट की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की आर बॉन गेब्रियल हैं। 71वें मिस यूनिवर्स पैजेंट के ग्रैंड फिनाले में दिवा को मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधु ने ताज पहनाया। यह कार्यक्रम 15 जनवरी को अमेरिका के न्यू ऑर्लींस में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 जनवरी को डॉट फेस्ट का उद्घाटन किया जो पुरुष हॉकी विश्व कप के मद्देनजर आयोजित भव्य सांस्कृतिक उत्सव है जो 24 जनवरी तक चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना अभ्यास हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वरुण। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था लेकिन 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था और यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ धन्यवाद।